అనగా ధర్మామృత్ లెక్చర్ నంబర్ 7.
ఓం నమః శివాయ.
ప్రణమ్య వీరం పరమావబోధం ఆశాదరో మూఢ విబోధనాయ సోపజ్ఞ ధర్మామృత ధర్మ శాస్త్ర పదాని కించిత్ ప్రగటీకరోతి.
పండిత్ శ్రీ ఆశాదర్ జీ లిఖిత్ యహ సాగర్ ధర్మామృత నామ గ్రంథ హై और अभी हम आए हैं पृष्ठ संख्या 21 पर.
ये आवाज है आपकी?
ये हम 21 नंबर पृष्ठ पर नीचे का पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं. ये जो नाट्य शास्त्र है उसमें जो रसों की बात है उसकी चर्चा कल की थी. आगे देखते हैं. यद्यपि यहां निर्वेद की गणना, निर्वेद का अर्थ हमने देखा था कि संसार का जो भय है, संसार देह भोग उनसे जो भय होता है उसको निर्वेद कहते हैं. तो कहते हैं वो व्यभिचारी भावों में की गई है, परंतु यह शांत रस का स्थायी भाव भी है. जिसका निर्वेद भाव पुष्ट हो जाता है उसका वह रस हो जाता है. यानी संसार शरीर भोगों के प्रति जो विरक्त भाव होता है तो वही अपने आत्मा में स्थिर होकर आगे शांत रस प्रकट करेगा. ये बात बताना चाहते हैं. जिसका परिपुष्ट नहीं होता उसका भाव ही रहता है. यानी वो रस नहीं होता उसका भाव रूप से ही रहता है. बस निर्वेद भाव, यानी निर्वेद भाव केवल होना नहीं, वो पुष्ट होना होगा, तब जाके शांत रस प्रकट होगा. ये कुछ स्थायी भाव और उससे प्रकट होने वाले रस, इसलिए इतनी विस्तार से उन्होंने चर्चा की. स्थायी यानी कुछ विशिष्ट जो भाव है, हम कहेंगे बेसिक जो कुछ हो गए और उससे वो कौन कौन सा रस उत्पन्न होता है उसकी चर्चा कल की थी उन्होंने. इस प्रकार के भावों और रसों की बहुतायत से, अधिकता से यह संसार रूपी नाटक भी विचित्र रूप है. यह संसार को भी नाटक की उपमा दी है और यहाँ भी वो अलग अलग भाव और अलग अलग रसों की बातें देखने में आती है. इसका निर्विकल्प अनुभव करने वाले मुक्तात्मा आत्मिक सुख में ही सदा निमग्न रहते हैं. ऐसे उपदेश को सुनकर उस पर तत्काल विश्वास कर लेने वाले अत्यंत अल्प है. ये बात हमने कल देखी थी. 12 नंबर के श्लोक में हम वो अर्थ फिर दोबारा देखते हैं. 12 नंबर का जो 20 नंबर के पृष्ठ पर लिखा है बीच में विशेषार्थ के ऊपर, कर्म से रहित अपने शुद्ध स्वरूप में विराजमान मुक्तात्मा व्यक्त स्थायी भावों और रसों के समूह से नाना रूप हुए संसार रूपी नाटक को देखते हुए निर्विकल्प रहते हैं. अनंत काल तक सुख का अनुभव करते हैं. यानी ये संसार कैसा है तो कहते अनेक प्रकार के वो स्थायी और भाव और रसों के समूह से विविध प्रकार का हुआ है. नाना प्रकार हुआ है ना, विविध प्रकार का हुआ है. क्योंकि हम देखते हैं अलग अलग जो भिन्न भिन्न जीव है उनके भाव अलग अलग होते हैं और अलग अलग रस उनके उत्पन्न होते हैं. और ये सिद्ध भगवान कैसे है वो तो अपने में निमग्न है, निर्विकल्प है. अरे संसार रूपी नाटक को देखते हैं ऐसा कहेंगे उसको. तो कहते हैं इस प्रकार के भावों और रसों की बहुतायत से, हम यहाँ पढ़ रहे हैं 21 नंबर पेज पर, यह संसार रूपी नाटक भी विचित्र रूप है. विचित्र का अर्थ होता है अनेक प्रकार का। इसका निर्विकल्प अनुभव करने वाले मुक्तात्मा आत्मिक सुख में ही सदा निमग्न रहते हैं, ऐसे उपदेश को सुनकर उस पर तत्काल विश्वास कर लेने वाले अत्यंत अल्प है। यहाँ सिद्धों की बात नहीं हो रही, तो ये सिद्धांत का ऐसा स्वरूप है, ये बात स्वीकार होने वाले बहुत है, ये कहना चाहते हैं। कुमकुंड स्वामी ने कहा है, जीव जिस केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा सबको जानता देखता है, उसी के द्वारा वह आत्मिक सुख का अनुभव करता है। क्या कह रहे हैं? ज्ञान और दर्शन के द्वारा सबको जानता देखता है, और सुख का अनुभव भी ज्ञान में ही हो रहा है, ज्ञान ही अनुभव करने वाला तो ज्ञान है, है? तो उसी केवल ज्ञान केवल दर्शन के द्वारा तो कहते आत्मिक सुख का अनुभव करता है। इस बात को भवे जानता है, उसकी श्रद्धा करता है, किंतु अभव जीव श्रद्धा नहीं करता। हाँ, ऊपर जो लिखा है तथा जो उत्तम कुमकुंड स्वामी ने कहा है, लिखा ना 21 नंबर के पृष्ठ पर, जैन वियाण दिशम या शब्दम जो सौम तेन सोखमीजम ज्ञान दि भवियो अभवीय सत्तोन सदी। यानी अभवी उसका स्वीकार नहीं करते, उसको श्रद्धा नहीं करते, भवी उसकी श्रद्धा करते। हम ये भी देखते हैं कि जिनेन्द्र भगवान की वाणी कहो या आगम का कहो या गुरुओं का उपदेश तो सब सुनते हैं, तो सुनकर उसकी श्रद्धा थोड़ी करते सब, है ऐसा कभी होता है? उपदेश तो वहां सबको मिल रहा है, एक तो सुनने की तैयारी नहीं, सुनकर उस पर विश्वास करने वाले बहुत अल्प है, अपने मन से कल्पना से धर्म मान रखा है, और जो सुन रहे हैं उसी में वो उसी भाषा में उसी वाणी में सभी पूरा खोल दिया है, आचार्यों ने कहो या ज्ञानियों ने कहो, परंतु जिसकी पात्रता है उसको ही उसका मर्म सही रूप से ख्याल में आएगा। वाणी तो सब सुन रहे कहो या यहाँ सब पढ़ रहे, पर वो पढ़ने में से वो सही अर्थ ग्रहण उसी को होगा जिसके भी उस समय की पात्रता। तो कहते अभव्य उसका विश्वास नहीं करता, फिर भी ग्रंथकार कहते हैं ऐसी परिस्थिति होते हुए भी, यानी इस भगवान की कहो या गुरुओं की कहो वाणी पर विश्वास करने वाले बहुत अल्प है, विरले है, फिर भी उपदेशक को निराश न होकर सुनने की इच्छा नहीं होने पर भी उस इच्छा को उत्पन्न करके उपदेश करना चाहिए, यानी उसको कुतूहल उत्पन्न करके इच्छा उत्पन्न करा के भी उपदेश देना चाहिए, ये बात बताना चाहिए। क्योंकि न जाने कब किसकी मति अपने हित में लग जाए। अतः समय प्रतिकूल होते हुए भी सुवक्ता को धर्म का उपदेश करना ही चाहिए। यानी अच्छे वक्ता है, जिनवाणी के वक्ता है, तो उनको तो उपदेश करना चाहिए, ये बात कहते हैं। अभव्य को उपदेश न देने में युक्ति उपस्थित करते हैं, यहाँ 13 नंबर तो नहीं डाला है, वो डालना चाहिए था ना, ये 13 नंबर गाथा का रहता है, सुवर्ण हो सकता है लिखा ना वहाँ, 13 नंबर डालो। हाँ, तो पहले उस 13 नंबर की गाथा पढ़ेंगे और फिर हम उसका उसका अर्थ देखेंगे। बहुशोप्युपदेशस्य न मन्दस्यार्थ संविदे भवति अन्धपाषाणः केनोपायेन काञ्चनम्। जो मंद है अर्थात जिसमें सम्यक दर्शन आदि को प्रकट कर सकना अशक्य है, क्योंकि वह मिथ्यात्व रूपी रोग से स्थायी रूप से ग्रस्त है। दूसरे शब्दों में जो अभव्य है उसे दो तीन बार की तो बात ही क्या, बहुत बार भी उपदेश देने पर हे ये उपादेय रूप अर्थ का बोध नहीं होता। ठीक ही है, क्या किसी भी उपाय से अंधपाषाण सुवर्ण हो सकता है? ये सुवर्ण पाषाण होते हैं जिस वो उसमें से और होते हैं, उसमें से सुवर्ण भिन्न करते हैं, उसको सुवर्ण पाषाण कहते हैं। परंतु अंधपाषाण ऐसे होते हैं उसमें वो सुवर्ण भिन्न नहीं कर सकते, उसको अंधपाषाण कहते हैं। अब ये विशेषात पढ़ेंगे तो और ख्याल में आ जाएगा। जैसे खान से एक स्वर्ण पाषाण निकलता है और एक अंधपाषाण निकलता है, जिस पाषाण में से सोना अलग किया जा सकता है उसे स्वर्ण पाषाण कहते हैं, और जिसमें से किसी भी रीति से सोने को अलग करना शक्य नहीं है उसे अंधपाषाण कहते हैं। इसी तरह संसार में भी दो तरह के जीव पाए जाते हैं, एक भव्य कहे जाते हैं और दूसरे अभव्य कहे जाते हैं, जिनमें सम्यक दर्शन आदि के प्रकट होने की योग्यता होती है उन जीवों को भव्य कहते हैं, और जिनमें उस योग्यता का अभाव होता है उन्हें अभव्य कहते हैं। जैसे एक ही खेत से पैदा होने वाले उड़द मूंग में से किसी में तो पचन शक्ति होती है, आग आदि का निमित्त मिलने पर वे पक जाते हैं। हमें मालूम है कोई मूंग या मठ वगैरह होते हैं वो ऐसे के ऐसे रह जाते हैं, उसको भिगो उसको सीजाओ कुछ करो तो ऐसे ही रहते हैं। उनमें से कुछ ऐसे उड़द मूंग होते हैं जिनमें वह शक्ति नहीं होती, वे कभी भी नहीं पकते। इस तरह जैसे उनमें पाक्य शक्ति और अपाक्य शक्ति होती है, वैसे ही जीवों में भी भव्यत्व और अभव्य शक्ति स्वाभाविक होती है। दोनों ही शक्तियां अनादि हैं, किंतु भव्यत्व में भव्यत्व शक्ति की व्यक्ति सादी है, यानी ये भव्य भाव कहो या भव्य कहो ये तो है अनादि से, परंतु भव्य होने पर वह जब समय दर्शन प्रकट हुआ तो वो व्यक्त हुआ करेंगे, तो वो सादी है। व्यक्ति ने पर्याय में प्रकट होना, व्यक्त होना। आशा यह है के भव्य जीवों में भी अभव्यों की तरह मिथ्या दर्शन आदि परिणाम रूप अशुद्धि रहती है, किंतु उनमें सम्यक दर्शन आदि परिणाम रूप शुद्धि भी संभव है। अतः सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति के पहले भव्य में जो अशुद्धि है वह अनादि है, क्योंकि मिथ्या दर्शन की परंपरा अनादि काल से उसमें आ रही है। हर जीव को अनादि से तो मिथ्यात्व रहा, उसमें से जब कभी समय दर्शन प्राप्त करते हैं मोक्ष मार्ग पर आगे हो जाते हैं, बाद में सिद्ध होते हैं, यानी जितने कितने सिद्ध है तो अनंत है। वो सभी पहले कैसे थे तो मिथ्या दृष्टि थे, और समय दर्शन प्राप्त करके फिर वो मोक्ष मार्ग पर आगे होकर सिद्ध हुए हैं। कोई ऐसा जीव नहीं बस सिद्ध ही था आनंद, ऐसा नहीं कहेंगे, वो भी पहले अज्ञानी मिथ्या दृष्टि। किंतु सम्यक दर्शन आदि की उत्पत्ति रूप शक्ति की व्यक्ति सादी है। ख्याल में आती बात, सम्यक दर्शन होता है किसी को, पहले तो मिथ्या तो अनादि से था, ये सादी है, उसको कहीं ना कहीं स्टार्टिंग है। अभव्य में भी अशुद्धता अनादि है, क्योंकि उसमें भी मिथ्या दर्शन की संतान अनादि है, किंतु उसका कभी अंत नहीं आता, अतः उसकी अशुद्धता अनादि अनंत है। अनादि से दोनों में है, भव्यों में भी और अभव्यों में भी, मतलब अभव्यों की अशुद्धता अनादि अनंत चलेगी, और भव्यों की जब वे समय दर्शन प्राप्त करेंगे तो अशुद्धता अंत हो जाएगी और शुद्धता सादिक हो जाएगा। हाँ सादी अनर्थ शुद्धता सादी अनर्थ। भव्यत्व की बात नहीं, निशुद्धता की बात करते हैं। भव्यत्व भाव जो है भव्य ने होने योग्य, समय दर्शन हुआ तो भव्यत्व प्रकट हुआ, परंतु जब सिद्ध हो जाते हैं तो भव्यत्व तो वो तो अभिव्यक्त हो गया ना पूरा का पूरा, अभी होने योग्य नहीं कहेंगे, वो हो चुके हैं उनको सिद्ध कहेंगे। दोनों में इस प्रकार की स्थिति स्वाभाविक मानी गई है। स्वाभाविक यानी वो किसी कर्म के कारण नहीं है, इसलिए उसको स्वाभाविक कहा। सारांश यह है संसारी जीव वह भव्य हो अथवा अभव्य हो अनादि से अशुद्ध है। यदि उसकी अशुद्धता को सादी माना जाए तो उससे पहले उसे शुद्ध मानना होगा, तो ये तो संभव नहीं है। और ऐसी स्थिति में शुद्ध जीव के पुनः बंधन असंभव हो जाएगा, क्योंकि शुद्धता बंधन का कारण नहीं है। यानी एक बार सिद्ध अवस्था प्रकट हुई तो फिर दोबारा संसार अवस्था बंध अवस्था प्राप्त नहीं होगी। अशुद्ध दशा में ही बंध संभव है, अतः अशुद्धि अनादि है और शुद्धि सादी है। यानी ये अशुद्धि किसी ने अन्य ने उत्पन्न नहीं करे, वो अनादि से ऐसी चली आ रही है, परंतु उसका अंत होकर शुद्धि प्रकट हो सकती है। जैसे स्वर्ण पाषाण में विद्यमान स्वर्ण की अशुद्धि अनादि है और शुद्धि सादी है, किंतु अंध पाषाण में वर्तमान यानी उसमें रहने वाला स्वर्ण अनादि से अशुद्ध होने पर भी कभी शुद्ध नहीं होता। यानी अंधपाषाण में सुवर्ण नहीं है वो आप नहीं, सुवर्ण है उसको भिन्न नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, अतः उसकी अशुद्धि अनादि के साथ अनंत भी है। आगे कहते हैं इस प्रकार का ही भव्य जीव उपदेश का पात्र है। पहले तो कहा वो तो अभव्य तो उपदेश के पात्र नहीं है, अब कहते भव्यों में भी कौन पात्र है इसकी बात अब बताएंगे 14 नंबर। श्रोतुं वांछति यः सदा प्रवचनं प्रोक्तं शृणोत्यादरात् गृह्णाति प्रयतस्तदर्थमचलं तं धारयत्यात्मवत् तद्विद्ये स संविदत्यपि ततो न्याश्चोहते पोहते तत्तत्त्वाभिनिवेशमावहति च ज्ञाप्य स धर्मसुधी। धर्मम है क्या, धर्म है कर्म। सम्यक्त्व से युक्त समीचीन बुद्धि वाला जो भव्य जीव सदा प्रवचन को सुनने के लिए इच्छुक रहता है और जो कुछ कहा जाता है उसे आदर पूर्वक सुनता है, सुनकर प्रयत्न पूर्वक उसके अर्थ का निश्चय करता है तथा प्रयत्न पूर्वक निश्चित किए उस अर्थ को आत्मा के समान यह मेरा है इस भाव से स्थिर रूप से धारण करता है। जो उस विद्या के ज्ञाता होते हैं उनके साथ संवाद करके अपने संशय विपर्य और अनध्यवसाय को दूर करता है। इतना ही नहीं, उस ज्ञात विषय से संबद्ध अन्य अज्ञात विषयों को भी तर्क वितर्क से जानने का प्रयत्न करता है तथा युक्ति और आगम से जो विषय प्रमाण बाधित प्रतीत होते हैं उनको हेय जानकर छोड़ देता है तथा प्रवचन के अर्थ में हेय उपादेय और उपेक्षणीय रूप से यथावत अभिप्राय रखता है। ऐसा ही भव्य जीव उपदेश का पात्र होता है। देखो क्या क्या बातें बताई है। इन्हें जो समीचीन बुद्धि वाला जो भव्य जीव है सम्यक्त्व से युक्त वाला लिया तो यहाँ जिसका विश्वास है ऐसा लिया होगा शायद, या सम्यक दृष्टि को लिया है ये यहाँ क्या कहना चाहते हैं, शायद हम विशेषार्थ में उसको निश्चित करेंगे।
भव्यपना तो समय को होने के बाद ही जाहिर होगा।
हाँ बात सही है। श्रोतुम वांछति यह सदा प्रवचनम प्रोक्तम श्रोत्यादरा सधर्मम सुधी ही, ये सुधी शब्द लिखा है इसलिए उन्होंने शायद, परंतु वो लास्ट में बताया उन्होंने सुधी, फिर भी हम ऐसा लेंगे यहाँ समीचीन बुद्धि वाला हम कहेंगे। इन्हें और क्या क्या उसकी विशेषता बताई, सदा प्रवचन को सुनने के लिए इच्छुक रहता है, हमने ये भी देखा था ना, तत्प्रति प्रीति चित्ते न ये न वार्ता पे श्रुता निश्चितम स भवे भव्य भावी निर्माण भाजन। किसने लिखा है? पद्मानंदी पंचविंशतिका में आचार्य पद्मानंदी ने लिखा है। तत्प्रति यानी जो आत्मा की बात भी जो बहुत प्रीति युक्त बहुत रुचि से सुनता है, यहाँ पर भी लिखा है प्रवचन को सुनने के लिए इच्छुक है, जो कुछ कहा जाता है उसे आदर पूर्वक सुनता है और सुनकर प्रयत्न पूर्वक उसका अर्थ का निश्चय करता है, अपने स्वच्छंद का पोषण करने के लिए या हंसी मजाक के लिए नहीं। ये मोक्ष जैसा उत्कृष्ट कार्य है तो इसको बहुत गंभीरता से स्वीकार होना चाहिए। तथा नहीं समीचीन बुद्धि वाला ही नहीं, जिसको जो हाँ सम्यक्त से युक्त वहाँ नहीं चाहिए, कि समीचीन बुद्धि वाला है अच्छी बुद्धि है नहीं, वो जो विवेक वाला है, विवेक है उसको सही गलत की पहचान है, ऐसा लेना है बस यहाँ पर, क्योंकि अभी तो सुन रहा है ना, अभी तो निर्णय करने जा रहा है। तो कहते सुनकर प्रयत्न पूर्वक अर्थ का निश्चय करता है, फिर प्रयत्न पूर्वक निश्चित कहेंगे उस अर्थ को, आत्मा के समान यह मेरा है इस भाव से स्थिर रूप से धारण करता है। यानी जब जैसे मैं स्वयं आत्मा हूँ, मैं तो ये जो अपनी यहाँ कुछ आत्मा संबंधी बातें बताई वो भी ऐसे मेरी है ऐसा वहाँ धारण करता है। जो उस विद्या के ज्ञाता होते हैं, यानी ये जो विषय समझाने वाले जो कोई है, भले वो मुनिराज हो गए या कोई गृहस्थ हो गए, उनके साथ संवाद करके चर्चा करके संशय विपर्य और अनध्यवसाय को दूर करता है। यानी उसमें उस सम विषय के बारे में कोई संशय है, कोई वो उल्टा मान रहा था और यहाँ कुछ अलग बात उसने सुनी और उसका निर्णय नहीं हो रहा ऐसी अवस्था है, तो उनके साथ बातें करके वो उसको दूर करे की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, उस ज्ञात विषय से संबद्ध, यानी वहां तो कोई एक विषय समझाया है और उसके संबंध में जो अन्य वहां विषय होते हैं, अन्य अज्ञात विषयों को भी तर्क वितर्क से जानने का प्रयत्न करता है। तर्क वितर्क यानी वो न्याय से विषय विषय के बीच में नहीं है क्या वहाँ विषय बराबर करना विषय तथा युक्ति और आगम से जो विषय प्रमाण बाधित प्रतीत होते हैं, यानी जो प्रमाण में नहीं बैठते हैं बाधाती है उनको है ये जानकर छोड़ देता है, तथा प्रवचन के अर्थ में हेय उपादेय और उपेक्षणीय रूप से यथावत अभिप्राय रखता है। उपेक्षणीय ने केवल वो जानने मात्र न हेय न उपादेय बस ज्ञान का गेय है, यथावत अभिप्राय रखता है यानी ज्यों का त्यों श्रद्धान करता है। हमने देखा ना सात तत्वों का ज्यों का त्यों श्रद्धान अभिप्राय, ऐसा ही भव्य जीव उपदेश का पात्र होता है। अब इस पर विशेषार्थ में क्या लिखते देखेंगे हम। यद्यपि भव्य जीव ही उपदेश का पात्र होता है तथापि उसमें भी शुश्रूषा, वो भी पा दिख रहा है क्या वो शो उनका बराबर स्पष्ट नहीं आ रहा। श्रवण ग्रहण धारण विज्ञान ऊह अपोह, ऊहा पोह है नहीं चर्चा, तत्वाभिनिवेश यानी तत्व का अभिनिवेश अभिप्राय ये आठ गुण होना आवश्यक है।
इन दोनों अलग अलग
अलग अलग उह और अपोह मिलकर उहा पोह कहते हैं। इन गुणों से युक्त समीचीन बुद्धिशाली ये केवल समीचीन लिखा है भोग्य ही उपदेश का पात्र होता है। जैन उपदेश को प्रवचन कहा जाता है। प्रो का अर्थ है प्रकृष्ट अर्थात प्रत्यक्ष और अनुमानादि प्रमाणों से अविरुद्ध वचन को ही प्रवचन कहते हैं यानी जो प्रत्यक्ष प्रमाण से जो बाधक नहीं होती है और अनुमान से भी जो सिद्ध होते हैं उसमें बाधा नहीं आती उसको कहेंगे प्रत्यक्ष अनुमानादि जो प्रमाण है उससे अविरुद्ध जो वचन है उसको ही प्रवचन कहते हैं।
आठ गुणों की चर्चा
करें वो नहीं चर्चा करना यानी प्लस माइनस यानी जो कहेंगे दोनों एंगल से जो अलग अलग एंगल से सुनना शुश्रूषा ने सेवा के अर्थ विनय विनय शुश्रूषा अच्छी तरह से वो शुरू शब्द वो सुनने के वो शुश्रूषा ने सेवा वो नहीं बोले ना
अच्छी तरह से
हाँ सुनना वाली बात
श्रवण
शुश्रूषा ने शुश्रूषा भी नहीं शुश्रूषा ने वही होगा शुश्रूषा श्रवण तो समझते सुनना ग्रहण यानी समझना धारण यानी याद रखना विज्ञान यानी उसका विशेष ज्ञान करना ऊह और अपोह यानी वो तो प्लस माइनस जो कुछ है दोनों एंगल से उसकी चर्चा करना वहां को उसको कहते हैं और तत्व का अभिनिवेश यानी तत्व अभिप्राय
ये शब्द ऊपर भी आया ना 12 नंबर के श्लोक में
सुश्रुता सदा उपाध्य की सुश्रुता हाँ श्रवण करने की इच्छा को उत्पन्न करके भी शुश्रूषा यानी श्रवण करने की इच्छा होनी चाहिए यही वही हाँ श्रेयदिति सदा उपाद्य अपि शुश्रुताम शुश्रूषुताम यानी वहां तो इच्छा को उत्पन्न करना यानी यही अर्थ हुआ यहाँ पर शुश्रूषाएं ने सुनने की इच्छा क्योंकि इच्छा जिसको सुनने की इच्छा नहीं होगी तो सुनने क्यों आएगा पहले सुनने की इच्छा हुई तो सुनने को बोला फिर सुना केवल सुनने से नहीं चलेगा समझना भी आवश्यक है जो सुन रहा है उसका अर्थभाषित होना चाहिए बस तभी तो सुना था समझा था मैं जाते जाते भूल गया क्या सुना था अच्छा लगा था क्या सुना था तभी तो धारणा तक पहुंचे तब उस पर विचार चलेगा विज्ञान में वही है जो सुना है समझा है धारणा में लिया है उस पर वो तत्व विचार चलेगा वो विज्ञान में लेना वह अपोह में भी वही बात होती है यानी अपने अभिप्राय और वो जो कुछ है अपनी जो कुछ समझती तो उसके साथ हम मिलान करेंगे हमारी क्या कल्पना की यहाँ क्या सुना है उसके साथ हम दोनों ओर से सही है कि नहीं क्यों है परीक्षा पूर्वक तो होगा और फिर तत्वाभिनिवेश यानी तत्व पर श्रद्धा अभी हम जहाँ आए थे ना विरुद्ध वचन को प्रवचन करते जैसे सब अनेकांतात्मक है इत्यादि वाक्य जिनागम के अनुकूल होने से प्रवचन कहलाता है प्रवचन ऐसे प्रवचन का प्रवक्ता भी वक्ता और प्रवक्ता उसके लिए भी प्रशब्द जैसे शांत और प्रशांत है ना मोह देने आनंद और प्रमोद, ऐसे वो प्रशब्द उसको और ठोस थोड़ा जरा वजन देता है। फिर से ऐसे प्रवचन का प्रवक्ता भी कल्याण का इच्छुक होना चाहिए। किसके कल्याण का? अपने और श्रोताओं के कल्याण की भावना से ही। क्या कहा? अपने और श्रोताओं के कल्याण की भावना से ही जो धर्मोपदेश करता है उसी की बात सुनने के योग्य होती है। कल्याण यानी वो लोग मुझे यश दे, प्रसिद्धि मिले, हाँ कमा कमा, उसकी नहीं, वो कल्याण है ही नहीं है, वो तो मान कषाय की पुष्टि है। तो यहाँ कहते हैं कि कल्याण की भावना ने हमें मोक्ष मार्ग प्रकट करना है, अंतरंग में स्थिरता करनी है। वो प्रवक्ता भी वो क्यों उपदेश देता है तो उसमें भी उसके और दृढ़ता होती है और उसके उपयोग की सूक्ष्मता होती है। एक धारा उस विषय पर चलता है, उसको समझाने का वह भाव है, तो उस विषय के ही बारे में वो सोचकर वहां बोलने का, वो दोनों कार्य वहां हो रहे हैं, तो उसके अन्य दुनियादारी की कोई वहां याद नहीं आ रही है, तो उसका उपयोग उसी में एक धारा रूप से चल रहा है, तो वहां उसका तो कल्याण है ही है। और ये श्रोताओं के भी कल्याण की भावना है उसके पीछे कि ये सुने और समझे और अपना अपना कल्याण करे, उसमें उसको कुछ उनसे लेना देना नहीं है। परंतु जो बात अपने को समझी है वो बिल्कुल दूसरे भी समझ जावे, ऐसी उसकी भावना है। तो कहते अपने और श्रोताओं के कल्याण की भावना से ही लगाया। जो धर्म उपदेश करता है उसी की बात सुनने के योग्य होती है। ऐसे प्रवक्ता से प्रवचन सुनने के लिए जो सदा इच्छुक रहता है, इच्छुक है ना शिष्य, और जब सुनने को मिलता है तो जो कुछ कहा जाता है उसे आदर पूर्वक सुनता है। ये श्रवण में आदर पूर्वक भी लगा है, पहले में पहले इच्छा है, इच्छुक है सुनने का और आदर पूर्वक सुनता है। शास्त्र सभा में बैठकर ऊंघता नहीं है और न गप्पोबाजी करता है। सुनकर के प्रवचन के अर्थ को प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करता है। जिसको हम कहेंगे उपयोग पूर्वक सुनेगा तो उसका अर्थ समझ में आ जाएगा उसको। और जो ग्रहण करता है, ग्रहण करने नहीं समझना, उसे इस तरह धारण करता है मानो वह उसका जीवन प्राण है, उसके बिना वह जीवित नहीं रह सकता। हाँ, यानी क्योंकि धारण करना यानी वो ज्ञान में कायम रखना चाहिए। उसके समझने में यदि कुछ संदेह, विपरीतता या अनजानपना लगता है, यानी अनजानपना ने सुना तो फिर क्या वो ख्याल में नहीं है, क्या कहना चाहते हैं, अनजानपना रहा, उसके समझने में तो विशिष्ट ज्ञाताओं के साथ बैठकर चर्चा वार्ता करके अपने संदेह आदि को दूर करता है। यानी वो अभी वो बात उसके समझने में आ गई, ज्ञात हो गई उसको, उस ज्ञात तत्व के प्रकाश में तर्क वितर्क करके, ये वितर्क यानी खोटे तर्क नहीं, तर्क वितर्क करते तो न्याय से बराबर वो उसकी चर्चा चलेगी। तर्क वितर्क करके अन्य विषयों को भी सुदृढ़ करता है। और यदि उसे यह ज्ञात होता है कि अब तक जो अमुक विषय को हमने अमुक प्रकार से समझा था वह प्रमाण बाधित है, अभी तक जो हम समझ रहे थे वो प्रमाण से सिद्ध नहीं, वो प्रमाण से उल्टा कुछ है, तो उसे छोड़कर अपनी गलती में सुधार कर लेता, उसको ऐसा नहीं चलाता, अरे हमने तो अभी ऐसा समझा था या हमने ऐसा बोला था और अभी इसको हमें तो लोग क्या कहेंगे, हम कुछ अभी कम ठहरेंगे, ऐसा नहीं। तथा प्रवचन सुनने आदि का मुख्य प्रयोजन तो हेय और उपादेय का विचार करके अपने अभिप्राय को यथार्थ करना है। हेय का हेय रूप से, जैसे हेय कौन सा तत्व हेय है सुना, आश्रव हेय,
आश्रवबद्ध हेय,
तो आश्रव क्या क्या है, शुभ अशुभ भाव, मोह राग द्वेष के परिणाम, तो शुभ भाव आश्रव है और आश्रव हेय है अभिप्राय में। हम डायरेक्ट उसको प्रवृत्ति भी छोड़ना चाहते हैं, यहाँ प्रवृत्ति की बात नहीं है, अभिनिवेश अभिप्राय में लेना है पहले में पहले, यथा योग्य प्रवृत्ति में रहेगा, क्योंकि प्रवृत्ति तो मुनियों की भी रहती है, शुभ भाव की छठा सातवा गुणस्थान चलता है, प्रवृत्ति में नहीं छूटा, पर अभिप्राय में छूटे बिना समय दर्शन नहीं होगा, अभिप्राय की बात मुख्य है, इसलिए तत्वाभिनिवेश कहा है। तो कहते हेय को हेय रूप से और उपादेय को उपादेय रूप से श्रद्धान करना ही अभिप्राय की यथार्थता है। यदि उसमें कमी रही तो श्रवण आदि निष्फल ही है, ये सारा बेकार हो जाता है। तत्वों का निर्णय तक नहीं पहुंचते अभिप्राय की बात, तब तक तो ये सुना नहीं सुना जैसा है ना, उसका प्रयोजन ठीक नहीं सिद्ध नहीं होगा। अतः जो भव्य जीव इस प्रकार के बौद्धिक गुणों से युक्त होता है, वस्तुतः वही उपयुक्त श्रोता, यहाँ सम्यक दृष्टि नहीं लिया है, बुद्धिमान है बस इतना ही, आगे कहते हैं इस प्रकार के बुद्धिशाली भव्य जीव की मति भी सदुपदेश के बिना धर्म में नहीं लगती। देशना का निमित्त तो उसके भी है, बिना उसके देशना के, यानी बिना देशना के सर्वथा निसर्ग जो समय दर्शन होता ही नहीं, सर्वथा काम है, भले इस भव में देशने वाला देने वाला कोई गुरु नहीं था, पूर्व की देशना तो अवश्य इस भव में काम आती है, देशना मिली हो तो कोई जिनबिंब दर्शन से भी हो सकता है, अन्य भी परिस्थिति में हमने देखे बहुत सारे उसके बाय, तो हम वो 15 नंबर की गाथा पढ़ेंगे ऊपर। महामोहतमश्चन्नम श्रेयो मार्गम न पश्यति विपुलापि दृशा लोका दिवश्रुत्या विनामति। जैसे दीपक आदि प्रकाश के बिना खुली हुई बड़ी बड़ी आंखें भी अंधकार से ढके हुए प्रशस्त मार्ग को नहीं देख सकती। क्या कहा, क्या उदाहरण दिया, आंखें खुली है बड़ी बड़ी है और मार्ग भी प्रशस्त है, तो कहते फिर भी वो अंधकार से ढका है तो वो दीपक के प्रकाश बिना नहीं देख सकता। वैसे ही धर्म श्रवण के बिना विशाल बुद्धि भी, वहां बड़ी आंखें ली, यहाँ कहते विशाल बुद्धि भी महामोहरूपी अंधकार से व्याप्त कल्याण मार्ग को नहीं देख सकती। विपुला अपि दृशा आलोकात् इव श्रुत्या विनामति। महामोहतमश्चन्नम श्रेयो मार्गम न पश्यति। महामोह देखो, ये नहीं, वो देशना अनादि का मिथ्यात्व है, तो ऐसे समय दर्शन हो जाएगा, काल लब्धि आई उसको समय दर्शन हो गया, तो कहते वहां देशना का निमित्त जरूर होगा ही, जो सर्वज्ञ भगवान से परंपरा रूप से उपदेश चला आ रहा है, या तो सर्वज्ञ भगवान के द्वारा या गंधर्व के द्वारा आचार्यों के द्वारा, यानी जो परंपरा, जो मूल परंपरा है, मूल मार्ग है, जो तत्वों का सही स्वरूप समझेगा सुनेगा वो सब उसमें आ गया, अभी हमने जो बातें देखी है, और तत्व का सही श्रद्धान हो जाएगा हेय उपादेय रूप से, तब जाके उसको तत्व विचार के कार्य समित्व की प्राप्ति होगी। आगे शास्त्र के संस्कार से जो बुद्धि में ज्ञानातिशय होता है उसकी प्रशंसा करते हैं। ज्ञान की अतिशयता होती है, निर्मल हो जाता है जो कहते हैं, उसके बारे में वस्तु स्वरूप के बारे में स्पष्टता हो जाती है। ये 16 नंबर दृष्टमात पर इच्छे ती मती शास्त्रेण संस्कृता व्यनक्य दृष्टमप्यर्थम दर्पणेन एव दृङ्मुखम्। जैसे दर्पण के योग से चक्षु स्वयं देखने में अशक्य भी मुख को देख लेती है। आपके पास आंखें हैं ना, सबको देखती है, अपना मुंह देख अपना मुंह नहीं देख सकती, आंखें स्वयं अपने को नहीं देख सकती, क्यों है? वैसे ही इंद्रिय और मन से जानने योग्य वस्तु को ही जानने वाली मति यानी मति ज्ञान किसको जान रहा है? इंद्रिय और मन से जो सामने वस्तु है वो उसके योग्य वस्तु यानी पुद्गल। अभी यहाँ तो पुद्गल को लेना है क्योंकि अभी तक उसने आत्मा को जाना नहीं है। तो यह मति शास्त्र से संस्कृत होकर, संस्कृत यानी सुसंस्कृत कहते हैं, संस्कार उसके होंगे, संस्कार ये भी ज्ञान की बढ़िया है, परंतु शास्त्र सुनने से वो मति ठीक हो गई, व्यवस्थित हो गई, संस्कृत होकर अर्थात शास्त्र श्रवण से अतिशय को प्राप्त, उसको अतिशयता को प्राप्त होना कहते हैं। इंद्रिय और मन के द्वारा जानने में अशक्य पदार्थ को भी प्रकाशित करते हैं। क्या करना? जैसे चक्षु स्वयं को देखने में अशक्य, ऐसे मुख को भी देख लेते दर्पण के माध्यम से, दर्पण से। ऐसे ही इंद्रिय और मन जिनको नहीं जान सकता, ऐसे पदार्थों को भी हम शास्त्र के द्वारा जान सकते हैं। अब हम शास्त्र पढ़ते हैं, अपनी यानी भगवान आत्मा की तो बात हम समझते ही है इसके द्वारा, तो इस विश्व में जो 6 द्रव्य है उनके जो परिणमन व्यवस्था है, उनके जो प्रत्येक समय में होने वाली बातें है, ये 3 लोक में जो कुछ जहाँ जो कोई व्यवस्था है, कहाँ कौन से जीव है, कौन से परिणाम से कहाँ मरकर जाते हैं, ये बातें तो हमें शास्त्र श्रवण से पता चले। कर्मों का कैसा बंद होता है और कैसे वो छूटने का मार्ग है, ये हमें शास्त्र से पता चलता है, क्योंकि कर्म को तो हम देख नहीं सकते। अभी सुना रखा है कि कर्म होता है, कर्म होता है, हमको तकलीफ देता है ना, तो उसके बारे में भी सही ज्ञान हमें शास्त्र के द्वारा प्राप्त होता है। आगे 4 प्रकार के श्रोताओं में से 2 प्रकार के श्रोता ही उपदेश के पात्र होते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं। 17 नंबर अव्युत्पन्नमनुप्रविश्य तदभिप्रायं प्रलोभ्याप्यलं कारुण्यात् प्रतिपादयन्ति सुधियो धर्मं सदा शर्मदं संदिग्धं पुनरन्त्यमेत्य विनयात् पृच्छन्तमिच्छावशान् नव्युत्पन्नविपर्यायाकुलमती व्युत्पत्त्यनर्थित्वतः। 4 प्रकार के श्रोता होते हैं, व्युत्पन्न, संदिग्ध, व्युत्पन्न और विपर्यस्त। क्या क्या नाम बताए? अव्युत्पन्न, संदिग्ध, व्युत्पन्न और विपर्यस्त। प्रवक्ता आचार्य, प्रवक्ता यानी वक्ता, प्रवचन की देने वाले विशेष प्रवक्ता आचार्य, धर्म के स्वरूप से अनजान अव्युत्पन्न श्रोता को, यानी वो धर्म का स्वरूप बिल्कुल नहीं जान रहा है वो अव्युत्पन्न श्रोता, उसके अभिप्राय के अनुसार धर्म से मिलने वाले लाभ, पूजा आदि का प्रलोभन देकर भी कृपा भाव से सदा सुखदायी धर्म का उपदेश देते हैं। ये कैसा है? बिल्कुल अनजान है धर्म से।
उपदेश का पात्र
है, उपदेश तो सभी है, वो आचार्य उसको उपदेश देंगे। क्या देंगे? रोज मंदिर जाना चाहिए, तुझे लाभ होगा।
दो सूत्र को पात्रता है, पात्र है
अभी तो पात्र की बात चल रही है, अभी तो पात्र की बात चल रही
है। अच्छा,
अभी अपात्र की बात नहीं की उन्होंने।
ये माने ये पात्र है ना?
बिल्कुल, अभ्युत्पन्न है और उसको लाभ का प्रलोभन देके कि तेरे लाभ होगा, पुण्य मिलेगा, तुझे अच्छे स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुझे संसार भी अभ्युदय हो जाएगा। ये लोभ दिखा कर भी धर्म में लगा रहे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में शायद ऐसा ही लिखा है कि कहीं तो जुगुप्सा उत्पन्न करके भी, अरे ये देह का इतना वर्णन करते हैं आचार्य वगैरह, तो उसके प्रति घृणा उत्पन्न करके भी आत्मा संबंधी जानने की कोशिश करते। जो मंदिर में नहीं जाता है उसको तो ये इतना उपवास का फल मिलेगा था, या अन्य भी कुछ, तो उसको लोभ दिखा कर भी धर्म के प्रति प्रेरित करता है। शास्त्र सुन जो नहीं सुन रहा है उसको सुनने के प्रति कुछ लोभ दिखाएंगे, तो यहां लिखा ना उसको लाभ और पूजा का प्रलोभन, प्रलोभन लोभ दिखा कर। पूजा का प्रलोभन ही नहीं, लोग तुझे मानेंगे, तुझे अच्छा फल मिलेगा, इस तरह से पूजा यानी वो आरती उतारना, वो पूजा नहीं।
हाँ,
बिल्कुल नहीं लगेगा। सामने वाला जीव कैसा है उसके अनुसार उसको उपदेश दिया जाता है, ये तो आचार्य है, उनका क्या दोष लगेगा? उनका अभिप्राय कुछ उसको लोभ उत्पन्न कराना नहीं है, उसको धर्म के प्रति लगाना। आपके घर में आपके है ना पोती, तो उसको चॉकलेट खिलाकर भी स्कूल में भेजते थे, क्यों? ये तो काम करेगी तो ये दे दूंगा।
हाँ,
वो चॉकलेट खिलाने कुछ अच्छी बात थोड़ी है, उसकी आदत नहीं लगाना है। कुछ उस अच्छा काम करे इसलिए उसको बच्चों को भी प्रलोभन दिखाता है, ऐसा यहाँ पर। अरे शांति से सुनो इसको, तुम्हारे धंधे में नुकसान नहीं होगा, तुम्हारे तो जिसको कहेंगे वो और उसमें तरक्की हो जाएगी, तरक्की हो जाएगी, तो तरक्की हो जाएगी, तो चलो सुनो तो सही घंटे भर। ये प्रलोभन के लिए प्रलोभन नहीं है, उनका अभिप्राय क्या है, इस जीव का इसमें कल्याण है, वो सुनेगा कुछ अपनी बातें समझेगा तो उसका कल्याण हो जाएगा, ये उनकी भावना है। ये धर्म के स्वरूप से अनजान अव्युत्पन्न श्रोता की बात है। तो प्रलोभन देकर भी कृपा भाव से, यानी उसका उपकार करे, वो कृपा करुणा भाव है तो कृपा भाव से सदा सुखदायी धर्म का उपदेश देता है। धर्म का उपदेश तो सदैव सुखकारी है, परंतु वो सुनने को इच्छुक नहीं था तो इसको किसी चीज का प्रलोभन देकर सुनने का इच्छुक कराना। पहले भी बताया था ना, प्रवक्ताओं को ये इच्छुक कराना चाहिए, पहले भी ऐसे भी बताई थी बात। जब बच्चे स्कूल कॉलेज की पढ़ाई पूरी हो जाती है और घर का कोई व्यापार है बड़ा, तो धंधे में तो लगना नहीं चाहते, ऐसा होता है ना, तो प्रलोभन दिखा के भी उनको, चलो बेटा चलो आज बैठो, चलो फिर आधी छुट्टी दे देंगे, चलो तो सही ऑफिस में, तो चलो सही, तो क्या कर दे कि उसको उस पर ले जाना चाहिए, ऐसा ही यहाँ पर। अब कहते तथा अभी दूसरा प्रकार है संदिग्ध, धर्म के विषय में संदिग्ध श्रोता। संदिग्ध है वो तो निर्णय नहीं अभी उसका, संदिग्ध है। हाँ, विनय पूर्वक समीप में आकर पूछता है कि यह ऐसे ही है या अन्य प्रकार से है, यानी वो समझना चाहता है। उसने भले सुना है परंतु वो समझा नहीं है, और वो समझना चाहता है तो उसको समझाने की भावना से धर्म का उपदेश देते हैं। किंतु जो धर्म का ज्ञाता व्युत्पन्न श्रोता है, पहला अनजान वाला था ना, अव्युत्पन्न ज्ञाता, अथवा विपरीत ज्ञान के कारण जिसकी मति विपरीत है, जो शास्त्रोक्त यानी शास्त्र में बताया हुआ, शास्त्रोक्त यानी शास्त्र में बताया हुआ धर्म का अन्यथा समर्थन करने के लिए कटिबद्ध है, यानी शास्त्र में लिए हुए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपनी बुद्धि से उसका अर्थ लगाना चाहता है।
बाद में
विपरीत
माने वो दोनों अलग श्रोता है,
वो अलग है। व्युत्पन्न श्रोता तो धर्म को जानता है, अच्छा। और विपरीत तो वो तो धर्म का बिल्कुल विरोधी है, विपरीत है। दोनों को ही उपदेश देने का क्या फायदा?
अच्छा, दोनों जानता है
उसको क्या सुनेंगे?
वो
जरूर सुनना चाहते तो जब वो सुना रहे तो सुने, उसमें उसका निषेध तो नहीं है, परंतु किसको उपदेश देना है? जो जो कुछ नहीं समझ रहा है और जो समझना चाहता है, जो ऑलरेडी समझता है उसको क्या और समझा रहे? जो समझ गया है उसको क्या समझाना है? यहाँ तो जो यदि वो प्रवचन चल रहा है पूरे ही सभा को अगर समझा रहे तो वो तो सभी आकर बैठेंगे वहां पर, परंतु खास करके समझाने की अगर बात है तो की बात है। ऐसे विपर्यस्त श्रोता को धर्म का उपदेश नहीं देते, क्योंकि देखो आगे लिखा, व्युत्पन्न श्रोता तो धर्म को जानता है और विपर्यस्त श्रोता धर्म से द्वेष रखता है। यहाँ तो यहाँ उसको सुनाने न सुनाने की बात नहीं, वो तो ऊपर उन्होंने इसमें डाली है। प्रतिपाद्यत्व दृढ़ती, उनको उपदेश देना चाहिए, यानी उनको इच्छुक भी करेंगे, अरे सुनो तो सही वगैरह वगैरह। और जो धर्म का ज्ञाता है उसको क्या प्रलोभन देना है? जरूरी नहीं, वो तो जान है। वो तो जानता ही है। यहाँ यह शंका होती है कि लौकिक फल की इच्छा से जिसकी मति दूषित है वह कैसे उपदेश का पात्र है? इस आशंका का निराकरण दृष्टांत द्वारा करते हैं। ऊपर बताया ना, उसको लौकिक फल की लोभ दिखाकर ही उसको इसके प्रति ले जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे ऊपर 18 नंबर में। यशृणोति यथा धर्मम् अनुवृत्य स तैव स भजन पथ्यम पथ्येन बाल किम नानुमोदते। देखो, जो जिस प्रकार धर्म को सुनता है उसे उसी प्रकार धर्म सुनाना चाहिए। कोई प्रलोभन के लिए, लाभ के लिए सुनता है तो उसको वैसा सुना, पुण्य के लिए सुनना चाहता है वो ऐसा सुना। पहले सुने तो सही, फिर बाद में निर्णय हो जाएगा उसको। सुनने को इच्छुक हुआ है ना अभी, कोई लोग से सुनने को आया हो, कुछ कुछ किसी बहाने से आया हो तो कहते उसको सुना, ये बात यहाँ बता रहे। तो उसके लिए दृष्टांत बताए, क्या अपथ्य के द्वारा पथ्य का सेवन करने वाले बालक की सब अनुमोदना नहीं करते है? अपथ्य के द्वारा पथ्य का सेवन करते क्या? वो कड़ू कोई औषधि नहीं ले रहा है तो उसको शक्कर है, चॉकलेट है, बतासा है, जो कुछ है उसके द्वारा उसका सेवन करा तो उसकी तो अनुमोदना दे। विशेषा जैसे बालक रोग दूर करने के लिए कटुक औषधि का सेवन यदि नहीं करता तो माता पिता मिठाई वगैरह का लालच देकर उसे कटुक औषधि खिलाते हैं। यद्यपि मिठाई उसके लिए हितकारी नहीं है तथा जब बालक मिठाई के लोभ से कटुक औषधि खाता है तो माता पिता उसकी प्रशंसा करते हैं कि बड़ा अच्छा लड़का है। उसी प्रकार जो सांसारिक प्रलोभन के बिना धर्म की ओर आकृष्ट नहीं होते ये बीच में कोई लेटर्स गए उठ कर लेना सांसारिक ऊपर है गया है उसके ऊपर मिठाई गया उसके ऊपर तो आधा आया हाँ। जो सांसारिक प्रलोभन के बिना धर्म की ओर आकृष्ट नहीं होते उन्हें सांसारिक सुख का प्रलोभन देकर धर्म सुनाना बुरा नहीं है। प्रयोजन तो धर्म सुनाने का है। यद्यपि सांसारिक सुख अहितकर है किंतु धर्म सुनने से वह उसे अहितकर जानकर छोड़ सकेगा इसी भावना से ऐसा किया जाता है। पहले बताया था उसको तो उसमें सुख लग रहा है ना और उसी की इच्छा में वो है रहता फिर भी अरे ये और मिलेगा तुझे ये सुन तो सही तो सुनेगा तो कुछ समझेगा तो उसकी सांसारिक बाकी इच्छाएं भी कम हो जाएगी। अब यहीं रुकेंगे हम।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तकनम सदा।